असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचेतस्व निष्ठानिष्टोपपत्तिषु।
नवमा श्लोक। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता यानी घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। व्याख्या। असक्ति ही उत्पन्न होने वाली सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम अशक्ति है। सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोग जन्य सुख प्रिय लगता है। परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। सांसारिक आसक्ति का त्याग करने का उपाय। संयोग जन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। संयोग जन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोग जन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु। पुत्र स्त्री घर धन जमीन पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिष्वंग है। पुत्र स्त्री आदि के साथ यथा योग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना अभिष्वंग नहीं है, प्रत्युत यह तो निर्लिप्तता असंगता है जो कि अमरता का अनुभव कराने वाली है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे ही पुत्र के स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया। ऐसी एकात्मता से रहित होने के लिए यहाँ अनभिष्वंगः पद आया है। कुटुंब के साथ अपना घनिष्ठ संबंध छोड़ने का उपाय। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखे। उद्देश्य तो उनसे अभिष्वंग अर्थात तादात्म्य दूर करने का ही रखे। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी न हो, क्योंकि राजी होने से अभिष्वंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त न करे, इस बात की बहुत सावधानी रखे। नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग हर्ष सुख आदि विकार न हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष शोक दुख उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर न पड़े। इसको भगवान ने सिद्ध्य सिद्ध्य हो समो भूत्वा पदों से भी कहा है। चित्त में समता रहने के उपाय। मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है, यह महान बाधक है। कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत संयोग जन्य सुख का त्याग करने के लिए मनुष्य को सांसारिक राग आसक्ति कामना ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली है। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर उन दोनों से अतीत परमात्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा।